चलते हैं आयतों पे। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। आयत नंबर 267। अल्लाह सुबहाना ताला आसमान से मुझे और आपको पुकारते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। पहले तो यहाँ रुके, खुद को पूछें, मुझे पुकारा गया। आप इमेजिनेशन में लाइए कि कोई आपको पुकारता है, आपकी कॉल है, या आप कहीं कॉल करते हैं। कब कॉल कनेक्ट नहीं होती? जब सिग्नल कमजोर हो। ऐसे ही है ना, आप किसी हॉस्पिटल में हो, अमूमन वहां बहुत कम लोगों के फोन काम करते हैं, बहुत ज्यादा कंक्रीट के अंदर हो, या जैसे आपको शुरू में जिक्र किया कल हम जहां थे, बहुत क्राउड हो तो वहां सिग्नल्स ड्रॉप होते हैं। याद रखिए, जिस तरह टेलीफोन के सिग्नल्स ड्रॉप हो जाते हैं ना, इस तरह बार बार कुराने पाक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू की पुकार हमारी भी ड्रॉप हो रही है। हमारा कनेक्शन ही नहीं जुड़ता अल्लाह से। कितनों को ये सुन के लगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मेरी कॉल आई है, मुझे अल्लाह ने बुलाया। आप अपने घर में बैठे हो ना, तो एकदम आपका बच्चा बोले, अम्मी आपकी कॉल है, तो दिल में क्या होता है, कहाँ से आई, किसी दोस्त की है, माँ की है, बहन की है, बाप की है, कितना कुछ हम सोचते हैं। सवाल कीजिए खुद से और लिखिए ताकि याद रहे, क्या या अय्युहल्लज़ीना आमनू की पुकार सुनकर मेरे कान खड़े होते हैं कि मेरा रब पुकारता है। और याद रखिए कि जब कॉल कनेक्ट ही नहीं होगी तो जवाब कहाँ से देंगे। कभी हम मसरूफ होते हैं तो कॉल्स मिस हो जाती हैं, कभी हम किसी और काम में लगे होते हैं, इसी तरह बार बार अल्लाह ताला पुकारता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और हम बिल्कुल बेतवज्जगी से आगे चल पड़ते हैं। फिर आपने देखा है कि कॉल जितनी दूर से आती है ना, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस कॉल, उतना हम ज्यादा कदर करते हैं, भागते हैं, वॉशरूम से भी लोगों को थरथली पड़ जाती है, कॉल आई, हालांकि क्या हुआ, फिर हो जाएगी, क्या बड़ी बात है, नमाज पढ़नी मुश्किल हुई होती है, तो ये कॉल कहाँ से आई है, ये उफक के पार से आई है। और कॉल जितनी अपने प्यारे की आए ना, उतनी बेचैनी बढ़ती है। बच्चा नाम भी साथ ले ले ना, अम्मी फुलां का फोन है, कहते जल्दी लाओ, और जिसकी बात ना सुननी हो कहते हैं टाल दो। तो ये कॉल किसकी आई है, अलवदूत, मोहब्बत करने वाले रब की। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो कह दो मैं करीब हूँ। और वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाली जात की तरफ से ये कॉल है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अपने कलमे के तकाजे पूरे करो। देखिए कितना खूबसूरत रिश्ता है ईमान का। ईमान बुनियाद बनाता है, उस पे इमारत आपने खुद खड़ी करनी होती है। ये भी तो अल्लाह ताला कह सकते थे, ओ मिस्कीनो, ए फुलानो, आपको तक कि तौरात में ज्यूस को किस तरह पुकारा जाता था, या अय्युहल मसाकीन, ओ मिस्कीनो, और अल्लाह हमें फकीर भी कह सकता था, क्योंकि या अय्युहन नासन तुमुल फुकरा वल्लाहु हुवल गनीयुल हमीद, सूरत फातिर में अल्लाह ताला कहता है तुम सब फकीर हो, मैं गनी हूं, लेकिन कितनी बड़ी जात हमें इतनी इज्जत देती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्योंकि ईमान का वो रिश्ता है कि जो खून के रिश्तों से बहुत आगे चला जाता है। किसी की एक आध दिन पहले बात सुनी तो जिक्र कर रहे थे कि कोई आलिमे दीन थे, तो कहते हैं कि वो हमारे दूर पार के रिश्तेदार भी थे, तो मैंने उनको चाहा कि अपने घर पे बुलाऊं, तो कहा गया कि आए भाई आपके साथ तो हमारा फुलां जगह रिश्ता भी है, तो उन्होंने कहा कि ये अपनी जगह लेकिन कलमे का रिश्ता इससे बड़ा है, मैं ईमान के लिए भी आऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि दिल कैसे एक साथ धड़कने लगते हैं ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान की वजह से एक दूसरे को मिलो, ईमान का नेटवर्क बनाओ। लेकिन जब हम दूसरी चीजों में खो जाते हैं ना, तो फिर हम पीछे हो जाते हैं। खैर, इस पुकार को वही लेगा जिसको अल्लाह से मोहब्बत है। क्या कहा, अनफिकू, खर्च करो, पेंट कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। कहा नहीं, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, मेरी एक शर्त है, मिन तैची बाती, पाकीज़ा दो मुझे, मुझे तुम्हारी गंदी कमाइयाँ नहीं चाहिए, शराब, जिना, बेहयाई, फहाशी, प्रोस्टिट्यूशन, मुझे ये कमाई नहीं चाहिए, मिन तैयिबाती, अगर कोई खूबसूरत कमाई है तुम्हारी, और दूसरी बात है मुझे कोई बेकार रद्दी माल ना पकड़ा देना, मुझे तो तीब वाला माल चाहिए, तैयिबात, खूबसूरत माल दो। बड़ी खूबसूरत रिवायत है, अगर आप इस आयत के साथ जोड़ लें तो ऐसे लगता है कि उसी की तफसीर है, अल्लाह के नबी सल्लम के एक रिवायत का खुलासा है कि इन्ना अल्लाह तैयब, अल्लाह ताला पाक है और नहीं कबूल करता मगर तैयब कमाई। यानी आप अपनी लफ्जों में ये कह लें कि अल्लाह सुबहाना ताला का टेस्ट बड़ा ऊंचा है। कभी आप किसी को कोई गिफ्ट दें, ऐसे उठा के दे देते हैं, क्या हम नहीं देखते कि वो क्या पहनता ओढ़ता है, उसकी चॉइस क्या है? वो कहते नहीं 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 ये नहीं वो पहनती, नहीं, वो उनका स्टैंडर्ड अच्छा है। देखिए मैं इस वक्त ब्रांडेड्स की बात नहीं कर रही, लेकिन हकीकत है कि हम जिसको भी कुछ देते हैं, कोई चीज़ भी घर में आती है, तो हम सोचते हैं, मैं आपको अपनी आदत बता देती हूँ, कभी भी गिफ्ट्स मिल जाएं इधर उधर से जहाँ से भी, तो मुझे ज़रूरत है तो मैंने इस्तेमाल करना है तो मैं कर लूँगी, नहीं करना है ना तो मैं उस चीज़ को हाथ में लेके सोचती हूँ, अपने दोस्तों साथियों फैमिली जहाँ भी मैं जानती हूँ, ये किसका टेस्ट है, फिर जहन में आते हैं लोग, अच्छा ये उसका, फिर मैं फ़ौरन नियत कर लेती हूँ, अच्छा किसी भी तरह मैंने ये उसको दे देना है। फिर मैंने नहीं कभी इंतजार किया कि ईद आए या शबरात आए या कोई आए, कोई मौका बना के बस ये आपके लिए, क्यों कि ये उसको पसंद आएगा, और हकीकत है एक चीज़ आपको पसंद होती है दूसरे को नहीं होती, और इसका ऑपोजिट भी है। तो जब हम किसी को कोई गिफ्ट देते हैं ना, तो फिर हम देखते हैं कि उसको क्या पसंद है, अब लाइए जरा अल्लाह ताला पे, अल्लाह कहते हैं तुम मेरे नाम पे कुछ देते हो तो तुम्हें पता है मेरी चॉइस क्या है, मुझे तैयब पसंद है, मुझे गंदी चीज़ें नहीं अच्छी लगती, खराब चीजें ना मेरे रास्ते में दिया करो, बासी खाना गले सड़े और ये वो। रिवायत आती है बनी इसराइली हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नाते से, अल्लाह ताला से चूंकि कलाम करने का उनको अल्लाह ने इख्तियार दिया था, तो एक दिन कहते हैं कि अल्लाह ताला तू क्या खाता है और तू क्या पहनता है, अब लाडले थे ना कलीम उल्ला जू थे, तो अल्लाह ताला ने उनकी बात नहीं टाली, कहा मूसा नहीं पूछो, कहा नहीं अल्लाह ताला आप बताएं आप क्या खाते हैं, आप सबको इतना खिलाते हैं तो आप क्या खाते हैं, कहा अच्छा मेरा खाना देखना है ना तो फलां जगह चले जाओ वहां तुम्हें मेरा खाना दिख जाएगा। अब आप सोचिए जब एक बंदा अल्लाह के खाने का सोचे तो जहन में क्या आता होगा कि दूसरों को इतना खिलाने वाला। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं और दिल में सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या कुछ होगा, जब अपॉइंटेड जगह पे पहुंचे तो ढूंढ रहे हैं कोई बड़ा शानदार खाना कुछ चीज होगी, कुछ नहीं दिखा, देखा तो दरख्त के नीचे बासी खाना पड़ा हुआ था। अल्लाह जी ये क्या है, कहा यही है मेरा, अल्लाह ताला आप ये खाते हैं, कहा मैं तो वही खाता हूँ जो मेरे नाम पे बंदा दूसरे को देता है। और इसी तरह रिवायत में आता है कि पहनने का पूछा तो वहां चीथड़े लटके हुए थे, पुराने फटे रंग फिटे हुए कपड़े, कहा जो बंदा मेरे नाम पे किसी को देता है मुझे तो वही मिलता है। तो कभी मैं और आप सोच लें कि किसी गरीब के हाथ में जाने से पहले वो चीज़ अल्लाह के हाथ में जाती है, अल्लाह को क्या ज़रूरत है, लम यलिद वलम यूलद, उसको न खाने की हाजत न पीने की हाजत, वो नहीं कुछ चाहता, लेकिन हम उसके नाम पे जो देते हैं उसको सोच लें। अब आप अपने ऊपर ले लें, किसी रिश्तेदार को क्या देते हैं और अल्लाह के नाम पे क्या देते हैं, हर एक अपने से पूछे, देखिए उसको तो ज़रूरत नहीं है, सच्ची जो बात है, और इसका ये भी नहीं मतलब कि पुराना नहीं दे सकते, पुराना देने और खराब देने में बहुत फर्क है, आपका खाना बच गया आपकी जरूरत से ज्यादा था, बिल्कुल अच्छा था, और आपका तो माशाल्लाह से वैसे ही जरा नखरा भी बहुत है, कोई बात नहीं मुलाजिम को दे दे वो खा लेगा, वो कपड़ा जो आपके दिल से उतर गया नो प्रॉब्लम दूसरे को दे दे, लेकिन ऐसा तो ना दे कि वो खुशी खुशी बाजी ने जोड़ा दिया है, घर जाके देखा तो उसमें अंदर कहीं फटे हुए और कहीं जले हुए और कोई ऐसे लपेट लपाट के आपने छुपा के दे दिए, आपको कैसा लगेगा। तो अल्लाह सुबहान तआला यहाँ यही बात कहते हैं कि खर्च करो मेरे रास्ते में, जब किसी को दो तो मिन्नत तैयिबात, पकीजा में से दो, तैयब दो। आगे हम पढ़ेंगे तो यही समझ लें कि जब किसी को दो तो खुद को उधर खड़ा कर लो कि मुझे मिले तो मुझे कैसा लगेगा। यहाँ खास तौर पे बात है माँ कसब तुम, अगली चीज उसमें से दो जो तुमने कमाया है, अपनी कमाइयों में से दो। देखिए ये आयत दो तरह से मुफस्सरीन ने समझी और हम आम लोगों की तरह भी इसको समझेंगे। यहाँ कसब तुम से एक तो इशारा है कमाई पर ज़कात की दलील। बस लोग कहते हैं कि जो बंदा मनी कमाता है यानी अर्न मनी है उस पे ज़कात नहीं देनी। बहुत सारी इसमें मुख्तलिफ चीज़ें की हुई हैं। हालांकि मिन तैयिबात मां कसब, तुमसे ये लफ्ज़ मिल रहा है कि जो तुम कमाते हो उस कमाई पर भी कुछ अल्लाह को दो। सिंपल से इसकी तफसीर कर लें कि अगर तुम्हें सारे दिन की कमाई में 100 पाउंड का नफा हुआ है तो कुछ अपनी खुशी से अल्लाह को भी दे दो। एक आदत है, हमने अपने बड़ों में ये आदत देखी। वो कहते थे कि मेरे कमाई में एक शेयर अल्लाह का है। मिसाल है, तीन पार्टनर है ना, तो वो तीन के साथ कहते थे एक चौथा पार्टनर भी है, और वो कौन है? अल्लाह। सारे दिन के बाद जो कमाई होती थी उसको तीन हिस्सों में नहीं, चार में करना है। एक तेरा, एक मेरा, एक और एक अल्लाह के रास्ते में दे दिया। आपकी खुशी है। इससे एक इशारा मिलता है कि जब बंदे के हाथ में कोई पैसा आए, मैं और आप कमाते तो नहीं है लेकिन हमें अपने मर्दों से मिले, जेब खर्च, बच्चों को पॉकेट मनी मिली, 5 पाउंड मिले, 5 पैनियाँ उठा के कुछ ना कुछ डाल दो। और ये चीज़ मैंने देखा है कि हमारे कल्चर में आम है वैसे, कि लोग महीने के शुरू में कुछ ना कुछ दे देते हैं जब पैसा आए। यानी बस सिंपल सी बात, आज आप और अपने लिए और मैं अपने लिए अगर ये रख लें कि जब भी कोई किसी तरह की चीज़ मेरे पास आए, पैसा आया कुछ, ठीक है आपकी हैसियत है, आप सारा ना दें, 5%, 2%, 1% दे दें। इसी तरह एक और चीज़ भी इसको अपने ऊपर ले लें, जिससे वल्ला ही आपकी अलमारियाँ बड़ी अच्छी रहेंगी और आपके घर कभी जंक नहीं बनेंगे। और वो क्या, एक जोड़ा नया आया तो एक पहले में से दे दें। लाएं नई चीज़ें रोज़ खरीदें और पिछलियों में से एक एक रोज़ दें। एक तो आपका घर एवर न्यू, हमेशा नए। अगर डिटेल में ना भी जाऊं तो मैंने देखा है कि हमारे घरों में 20 साल पुराने बर्तन भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। पाकिस्तान जाके तो देखें, वो ही जहेज की पतीली अभी तक चल रही है, काली स्याह हो गई, डुंडी को भी तोड़ के उन्होंने उसकी जगह कुछ लकड़ी लगवा ली है, जाने नहीं देते। तो भी दे दो किसी अल्लाह के बंदे को। हाँ, तो असूल बनाइए कि जो कसब मिला खुद कमाया, किसी ने दिया दूसरे को दे दें। आप एक नई बेडशीट लाइए और पिछली जो यूज हो चुकी है उसमें से एक दे दें। इतनी जल्दी जल्दी सर्कल में लाया करें अपनी चीजें। कभी बैठ के मैं खुद सोचती हूँ मेरी फलां चीज कहाँ है, मुझे याद भी नहीं होता। क्यों नहीं याद? क्योंकि यूज की, कहीं से इधर से उधर आए, वो पकड़ के उसको दे दी, वो उसको दे दी, कोई बात नहीं और जो मिल गई। और मजा ये है कि आपके पास हमेशा नहीं रहती है। फिर कपड़े आपके पास, क्या आप हजारों कपड़े रख सकते हैं अपने पास? एक आता है दूसरा दे दो, उधर दे दो, तो जब कुछ आए तो कुछ दे दो। एक माँ की मुझे बड़ी प्यारी बात लगती है, वो अपने बच्चों को भी ये सिखाती थी कि बेटा जब एक नया जोड़ा तुम्हारी अलमारी में आए तो पिछलों में से एक निकाल दो। हम कहते हैं लो अभी तो ये ठीक है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि वो दो जो खराब हो जाए, और जिसके रंग भी खराब, और उसको जाते हुए फिर बटन भी नोच लो। नहीं, ये तो बड़े अच्छे हैं, ये लेस भी उतार लो, ये मैं दूसरे जोड़े पे लगाऊंगी, और वो जोड़ दुपट्टा भी उतार लो मासी को, बड़ा नुचा पुचा जोड़ा दे के कहते हैं खातम ताई की कब्र पे लात मारी है। और करते हैं हम औरतें ये सुघड़ापे के नाम पे, हम बड़ी सुघड़ औरतें हैं। शादी का जोड़ा मैं इसकी रजाई बनाऊंगी, ये मेरी बेटी के लिए बनेगा, वो पहनती नहीं है 20 20 साल पहले। यकीन करें, हैरत हुई मुझे किसी के मुंह से सुन के, मेरा ख्याल है उनकी शादी को 20 साल से ज्यादा हो गया, तो कहती मेरे पास अभी भी शादी का जोड़ा है। आप में से किस किस के पास है? हाथ खड़े करें। एक, आपका भी है, आपका भी है। कितनी दफा पहना है आपने? किस सोच से रखा हुआ है कि कभी फिर इतनी पतली होंगी कि उसमें पूरी होंगी? आपने रखा होगा मेरी बेटी पहन लेगी, हैं जी? आप सोचिए, या आप पहने या कोई पहने। आप अगर अब यहां बातें करने लग जाएंगे तो फिर तो लंबी चौड़ी बातें हो जाएंगी। जो जोड़ा पिछले 20 साल से आपके ट्रंक में रखा है, सिर्फ वो ट्रंक में नहीं जगह ले रहा, उसने आपका दिल दिमाग सोचें भी रखी हुई है। फिर रोते हैं, हाय कभी इसमें पूरे आते थे, और कभी वो तस्वीरें देखे तो छुपाते फिरते हैं, हाय ये लोग हैं, माँ बाप को क्या हो गया। ये नई चीज़ को इस्तेमाल करें, सर्कल में रखें। मैं एक फैमिली को जानती हूँ, शादी के जोड़े की बात है, तो आप भी ऐसा काम करें। अल्लाह करे आज के हम ये करें ताकि हमें कुछ दीन के लिए वक्त और माल मिले। तो उनकी सबसे बड़ी बेटी है, उन्होंने अपनी बेटी की शादी पे एक रेड कलर का सूट बनवाया, जैसे भी वक्त का रिवाज था, उनकी बेटी ने शादी पे पहना। फिर उसके बाद 1 2 साल 3 साल बाद शायद उनके बेटा, एक ही बेटा उनका, ये भी बताऊं आपको, बेटे की जब शादी की तो उन्होंने बता दिया उनको कि यही जोड़ा हम अपनी बहू को वलीमे पे पहनाएंगे। वही जोड़ा उनकी बहू ने पहना शायद 2 3 साल बाद। उसके बाद क्या हुआ, मजे की बात यह है कि उनकी तीसरी, तीन बहनें और एक भाई है, मतलब तो चार बच्चे हैं उनके। तीसरी बहन की शादी हमारे पास अमेरिका में हुई उनकी, वो वहां थी और हमारे पास थी तो वही शादी हुई उसकी। वो ही जोड़ा उस तीसरी बेटी ने तीसरी दफा पहना दूसरी बेटी ने, और उसके शायद 1.5-2 साल आखिरी बच्ची की शादी भी अमेरिका में ही हुई हमारे पास, तो वही जोड़ा उसने पहना। और हर दफा वो हर एक को नहीं उठता, वो अल्लाह ही कोई पता नहीं चलता। मैं कहती हूँ कि अगर हम मुसलमान रियलिस्टिक हो जाएं, आप एक जोड़ा बनाएं, आप सबके पास जितने जोड़े हैं ना घरों में शादी के, ला के इधर एक शीशे की अलमारी में रख के उस पर टैग लगा दें कि जिसको शादी के लिए जोड़ा चाहिए आइए बैठते हैं बात करें ले ले। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात कह रही हूँ तो ये हुआ हुआ भी है। मेरा ख्याल है इस वक्त भी नॉर्वे में हमारे स्कूल में 4-5 शादी के जोड़े हैं और एक से खूबसूरत है। लोगों ने डोनेट किए जब लीगत प्रोजेक्ट बना, वो रख दिया। मैं तो हैरान रह जाती हूँ कीमतें सुन सुन के, 7-8 हज़ार करोन का एक जोड़ा। अब कौन खरीदे कौन बनाए, और जिसने पहनना उसने कितनी देर के लिए पहनना। और बाद में वो हमारे स्कूल में बच्चियों में से एक दो की शादी उन्होंने वहीं से स्कूल से लिया पहना, बगैर मांगे कहे उन्होंने 1,000 करोन थे वो स्कूल को सदके में डाल दिए कि मैं खुद पाकिस्तान से बनाती तो शायद 10,000 का बनना था तो मैं इधर ही बना दूँ। क्या है, और जब उसने पहना और उसने स्टेज पे आके सबको बताया था कि आज सर से लेके पांव तक मैं पूरी की पूरी स्कूल के सदका बॉक्स के अंदर से चीजें ली हुई हैं, जूती जोड़ा, सिर्फ कमीज उसने अपने नाप की कमीज पाकिस्तान से प्लेन सिलवाई होगी क्योंकि वो उसको पूरी नहीं थी। और वो इतना भारी जोड़ा था कि उठाया नहीं जा रहा। एक स्टूडेंट ने डोनेट किया, दूसरी ने उसको पहना। और पर्स भी, ये जो जिसको आप क्लच बोलते हैं, वो भी स्कूल के बिल्डिंग बनी थी, लोगों ने नई चीजें भी बेशुमार दी, यूज भी दी। वो परस भी उसने खुद बताया था कि मैं कह सकती हूँ कि मैं अपनी शादी के लिए बाहर कहीं शॉपिंग के लिए नहीं गई, सर से पांव तक मैं इस वक्त जो भी मेरा है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च हुआ है। देखिए रियलिस्टिक बने, इस वक्त इतनी जरूरत है मुसलमानों को इस रियलिस्टिकिज्म की कि बिलीव नहीं कर सकते हम किन खतरों के आगे खड़े हैं। मैं तो एक जब ये बाहर हुआ आती हूँ 2-4 दिन कहीं जहाँ पब्लिक में, मेरा तो दिमाग भां भां करता है। या महून फटक रही है उम्मत। और जोड़े देखें, 3-3 लाख रुपए का जोड़ा एक शादी पे पहनते हैं, और वल्ला ही कसम खा सकती इस जगह पे बैठी हूँ ठीक 1 महीने के बाद बच्ची घर आ गई। कैन यू बिलीव, सिर्फ 1 महीना। इज इट ट्रू? यस इज ट्रू। खुशियां नहीं मिलती तो बहरहाल दिल खुला रखे इंसान, जो भी उसके पास चीज आती है उसमें से अल्लाह को दे। इसी तरह आप देखिए कि अगला हिस्सा आयत का, व मिम्मा अखरज ना लकुम मिनल अर्दी, और उसमें से भी दो जो हमने तुम्हारे लिए निकाला जमीन में से। यहां बड़ी अहम बात लिखाने लगी है इसलिए तवज्जो रखिएगा। और जमीन में से जो तुम्हारे फसल निकलती है उस पर भी खर्च करो। इसको कहते हैं अरबी जुबान में उशर, सुना भी आपने, जकात और उशर का निजाम। जकात क्या होती है? साल भर जो चीज आपके पास रही किसी भी सूरत में, यानी आपकी सेविंग्स, कैश, क्रॉप, व्हाटसो एवर, उसके ऊपर एक साल के बाद हिसाब लगाएं, 100 पे 2.5 यानी 2.5% उसमें से फीसबिलिल्लाह दे दें। सवाल पैदा होता है जिन लोगों की जमीनें हैं, जिमीदार किस्म के लोग हैं, वो क्या करें? ये उनका जवाब है, ये कुरान की आयत उशर के बारे में है कि जब भी फसल आएगी, किसान दाना डालता है, फसल काटता है। अब दो तरह की खेतियां होती हैं, एक वो है जिसमें पानी भी पैसों का लगता है, ट्यूबवेल्स या बिजली के साथ पानी खींचते हैं, ठीक है, और एक वो है जिसमें आसमानी बारिश होती है और खर्चा कोई नहीं आता। एक में 8/10 हिस्सा और दूसरे में 20वां हिस्सा, जिसमें उसका अपना पैसा खर्च हो रहा है, जिसमें समझे कि उसको पैसों का पानी खरीदना है उसमें सिर्फ 20वां हिस्सा फसल का, और जिसमें पैसा मतलब दूसरी सूरत है तो वहां उशर देना पड़ता है। वह खर्च नलकु मिनल अर्दी, और जो हमने तुम्हारे लिए जमीन में से निकाला उसको दे दो। क्यों दे दो? नजराने के तौर पे कहला मैंने तो एक बीज डाला था, तूने हजारों बीज लाखों बीज निकाल दिए, तो क्या मैं इतना थोड़ा दिलाऊं कि मैं उसमें कुछ भी तेरे रास्ते में नहीं दूंगा? देखिए आप तो जमीन को दे के भूल गए ना, किसान तो मट्टी में डाल गया अपना बीज, उसको क्या मिलना था? अगर अल्लाह मट्टी को हुक्म ना देता तो मट्टी सारे बीज खा जाती, लेकिन अल्लाह ने इस जमीन की भी कुरान में तारीफें की हैं कि ये जमीन भी बड़ी नेमत है, तुम्हारे मुर्दों को तक को संभाल के रखती है, और तुम उनकी लाशों को देख के घबराने लगो कैसे उनकी बदबू को अपने अंदर छुपा लेती है। और एक दाना तुम उसको देते हो तो वो तुम्हें आगे से कितना देती है। तो गोया के जमीन पे कमाई में से अल्लाह को दो। बड़ा भी नाजिब एक सहाबी हैं, कहते हैं कि ये आयत अंसारे मदीना के बारे में नाजिल हुई। खजूरों के मौसम में जब खजूरें उगती थी तो मस्जिद नबी में एक रस्सी लगा देते थे, ठीक है। फिर जिसके खेत में कुछ खजूरें उगी, उनकी फसल तो खजूर ही थी ना, तो वो उसमें से एक खोशा जितना भी उसका हिस्सा होता था ला के तो मस्जिद नबी में रख देते थे। और वहां कौन खाते थे? असहाबे सुफा खाते थे। असहाबे सुफा कौन थे? आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह उनकी डिटेल्स। लेकिन ये होस्टलाइट्स थे, हॉस्टल में रहते थे, इल्म के हसूल के लिए 70 के करीब, और कमोबेश उनकी तादाद कभी ज्यादा भी होती थी कभी कम, मस्जिद नबी में आते दूर से, कोई इधर से कोई उधर से। मदीना के नेटिव भी होते थे लेकिन वो कहते थे हमने इल्म को डिवोट होके सीखना, हम घरदारियों और बच्चे और खानदानों में फोकस नहीं रहते, अल्लाह के नबी हमें इधर ही रख लें। बड़े नसीब की बात है जिसके कदम इल्म के लिए निकले और वो खैर समेट ले। वहां आते, अब वो बेचारों का ना घर था ना बार था, हमारी तरह के यहाँ सहूलतें भी नहीं होंगी जो दुनिया में आज मौजूद हैं। तो क्या होता कि जो जिसके घर में खाना पीना फल सब्जी बचती वो लाके वहां रख देते, तो वो बेचारे खा लेते थे। किसी ने एक मौके पे वहां आके रद्दी और खराब खजूरें लटका दी तो उस पे आयत उतर गई कि तुमने इन इल्म वालों को इतना घटिया समझा, तयी बात में से खर्च करो, तुम इनको दोगे तो तुम्हें खुशी होगी। यहां आप देखिए कि अल्लाह के रास्ते में देने का मिजाज समझ आ रहा है, बताया क्या जा रहा है, चल चलाओ ना करो। पीछे खर्च की बात थी, अब ये बताया कि किस क्वालिटी का खर्च करो, किस तरह की ये चीजें रखनी चाहिए। खाना पुरिया ना किया करो, ऐसी चीज ना दो कि देने वाले को खुशी की बजाय और दुख होने लगे कि मुझे क्या दिया। और तोहफा देने से पहले सोचो कि जिसको दे रहा हूं क्या उसको कुछ फायदा भी होगा कि नहीं, खुशी होगी। तीब अरबी जुबान में खुशबू को कहते हैं, खुशबू वाला तोहफा दो, खुशी हो बुगज में इजाफा ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बड़ी प्यारी रिवायत शेयर करूंगी आपके साथ, फरमाया जो ये पसंद करे कि उसे आग से बचाकर जन्नत में दाखिल किया जाए, पहले तो आपसे ही पूछती हूँ कि आप और मैं चाहते हैं, हम सब चाहते हैं, तो फरमाया कि उसे चाहिए कि उसकी मौत इस हाल में आए कि वो अल्लाह पर ईमान और आखरत पर ईमान रखे, और उसको चाहिए कि अपने लोगों के साथ वो मामला करे जो खुद वो अपने लिए पसंद करता है। ओ कमा काला रसूलुल्लाह, यानी दूसरों के लिए वो रखो जो तुम्हें अपने लिए भी पसंद है। हम कहते हैं ना इससे मुराद जोड़ा है, किसी को वो जोड़ा दो जो तुम्हें पसंद है, नहीं, इससे मुराद रवैये है। याद रखिए कि हदीस का एक और हदीस का खुलासा है कि अपने रवैये को लोगों के रवैये के ताबे ना किया करो कि वो मेरे साथ अच्छा करेंगे तो मैं उनके साथ अच्छा करूंगा, बल्कि तुम उनके साथ हमेशा ही अच्छा रखो, अच्छा मामला करो। तो गोया के अल्लाह के रास्ते में घटिया चीजें ना दो बल्कि अच्छी तरह से दिया करो, खुशी होगी, दुनिया में भी तुम्हें फायदा होगा, आखिरत में भी फायदा होगा। और अल्लाह सुबहान तला ने इधर मिजाज सिखा दिया, क्या ना करो, पहले तो बताया ये करो, और अब क्या ना करो, वला तयम्ममुल खबीस मिन्हु तुन्फिकून, और ना इरादा किया करो खराब चीज का इसमें से जो कि तुम खर्च करोगे, यानी खराब और गंदी चीज को देने का इरादा ना किया करो, क्योंकि वलस्तुम बियाखिज़ी ही, तुम नहीं उसको लेने वाले, और अगर कभी तुम्हें कोई दे इल्लान तुहमिदू फी, मगर ये कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो। इसको हाईलाइट कीजिए, ये है वो क्राइटेरियन जो एक बंदे को सिर्फ और सिर्फ खुद सेट करना है। किसी को कोई चीज़ दो तो खुद को रिसीविंग एंड पे कर लो, और सोचो कि अगर कोई मुझे ये चीज़ दे तो मुझे क्या लगे। इतनी घटिया और इतनी बेकार चीज़ उसको ना दे दो कि जब कोई तुम्हें दे तो तुम दुख की वजह से, हकारत की वजह से या नफरत की वजह से आंखें बंद कर लो, नागवारी लगे। जरा सोचिए, इसमें वो सारी बातें जो पिछले सबक में इशारतन हुई थी, मासियों को जो खाना देते हैं, जो चीजें उनको देते हैं, गरीब रिश्तेदारों को जिस तरह की चीजें देते हैं, सोचो। देखिए, एक तो स्टैंडर्ड, आप पहनते हैं 50 पाउंड की चीज, आप अपने रिश्तेदार को 5 पाउंड की भी दे दें, नो प्रॉब्लम। ये मतलब नहीं है इससे आपका स्टैंडर्ड बिगड़ा हुआ है, कोई बात नहीं। आप 50 वाली भी आपको चुभती है, मोटी लगती है, हो सकता है उसको 5 पाउंड वाली भी बड़ी खूबसूरत लगे। इधर मुराद क्या है कि तुम जब किसी को कोई चीज दो तो वो अखलाक से गिरी हुई चीज ना हो, फटी हुई चीज दे। आपको कोई जोड़ा दे, खोलें तो फटा हो, दुख होगा ना। खाना दे, बड़े खुश होंगे, वो खाना आया, खोलें तो उसमें से बदबू के भभूके हैं। बाज लोग फेंकते भी कोई नहीं और देते भी तब है जब बिल्कुल खराब होने की है। बाज दफा चीज हमारे पास होती है, मिसाल है देखिए कि यहाँ तो अब इतना हमें मौका नहीं मिलता, लेकिन फिर भी कमोबेश हर जगह ये मुमकिन है। आपका खाना बच गया तो आपने खाना पकाया, थोड़ा बहुत बच जाता है, कोई बात नहीं। अब ये खाना आपको ये पता है कि मेरे घर में कोई नहीं खाएगा, ठीक है, नहीं खाता, कोई बात नहीं, उनका मिजाज है, अब क्या करें। अगर आज आपकी मेड ने वो खाना बनाया है और आप उसको वो खाना शाम के वक्त वही खाना उसको दे देंगे, तो क्या कोई हर्ज की बात है? नजरें तो भर गई। हमारा हाल क्या है कि पहले अपने बच्चों को खूब खिलाते हैं, प्लेटें भर भर के देते हैं, और जब वो खा नहीं पाते ना, तो फिर वो आधा कटा हुआ बर्गर और वो बचे हुए फ्रेंच फ्राइज फिर मासी को कहते हैं कि ये तुम खिला लो उसको, और नुचा पुचा। आप देखिए कि अल्लाह अच्छा खाने से रोकता नहीं है। आप खाएं, आप मैकडोनल्ड खाते हैं, आप बर्गर खाते हैं, आपको जो दिल चाहते हैं, लेकिन घर में जो मुलाजिम है, गरीब मस्कीन, उन्होंने क्या खाना होता है? आप 4 बर्गर जो मंगाए, 5 मंगा लीजिए। पिज्जा आपने मंगाया, उसके 8 पीस किए, 7 पीस आप रख लें, छोटा सा ही सही है, एक पीस उसको भी दे दें। उन गरीबों ने कहाँ जाके 1500 रुपए का एक पिज्जा खरीदना है? आपके बच्चे, पहले आप बच्चे को उसकी उम्र से बहुत ज्यादा देते हैं और फिर वो नहीं खाते तो फिर उनका बच्चा हुआ कहते हैं ये कुटा पुटा खाओ। फ्रूट आता है घर में, आपकी तो फ्रिज भरी हुई है, जितने मर्जी खाएं। मासी गरीब ने खुद ले नहीं सकना, आप कहते हैं एक फ्रूट इसको भी दे, फिर ढूंढते हैं सबसे छोटा कौन सा है, काना सेब, दागी सेब, बिल्कुल जिसमें झुरियां भी, कहते हैं ये उसको दे दो, जो जो बाबा को दे, भाई एक देने अच्छा दे दें, क्या हर्ज है? आपके पास जो खराब सेब है, जरा खराब से मराज ये कि जरा शक्ल बिगड़ी, उसको काट के चाट बना लीजिए। बस ये सोच लो कि अगर कल कोई तुमको दे तो तुम्हें कैसा लगेगा। ये है वो क्राइटेरियन जो इस्लाम ने पैदा किया। और आप पढ़ेंगे सहाबा कराम कैसे थे कि खुद खजूरें खाते थे जो वहां की बिल्कुल रद्दी आइटम थी, और जब उनके घरों में गुलाम और मुलाजमें थी और जो कैदी आते थे दुश्मनों के, उनको रोटी खिलाते थे। रोटी ऐसे ही थी उस वक्त जैसे आज के दौर में, तो मुझे लगता ही कुछ नहीं कि हमारे लिए क्या नायाब है। यानी अगर आपको ऐसे ही है कि जैसे आप रोज घर में दाल सब्जी पकाएं और किसी दिन बच्चों की फरमाइश पे आप पिज्जा मंगा लें या फिश बर्गर मंगा लें, फिश एंड चिप्स, ऐसी बात थी कि मुलाजिमों को वो ऐसी चीजें खिलाते थे और खुद घर की जो भी दरख्तों से उतरी हुई खजूरें थी वो खाते थे। ये दिल किसका होगा जिसका दिल अल्लाह ने खोला होगा? जो अल्लाह को खिलाने की नीयत से खिलाएगा वो तो अच्छी चीज खिलाएगा। ठीक है, आपके पास ज्यादा था कम था, हालात बदलते रहते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि हंडिया पकी तो मेहमानों को देने के बजाय उनको दे दो, लेकिन जब बच जु गया तो कुछ उनको दे दो। अच्छा, हमारा हाल क्या, यहाँ रहते हैं ना तो यहाँ तो मेड्स है ना, और इंग्लिश भी बोलती हैं और पेंटें भी पहनती हैं, तो फिर हम तो उनको आते कहते हेलो, हाय, डू यू वॉन्ट एनी ड्रिंक, अच्छा हेल्प योर सेल्फ, खा लो पी लो, को बुरा नहीं मनाते, उनको फिर भी रिस्पेक्ट देते हैं। जरा सोचिए अपने मुल्क की मासियां, वो तो हमारे साथ बराबर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। क्या हमारी मासी की ये हिम्मत है कि फ्रिज में से खोल के एक कोक का कैन ले ले, दूध डाल के पी ले? हम कहते हैं लिया क्यों, दिया कि हमने तो उनके ग्लास अलग रखे होते हैं। कहते हैं इनके दांतों में कैविटीज हैं। तो जो आपके बाकी आते हैं उनकी कैविटीज आपने मेहमानों की देखी है कभी? नहीं, इनके जरासीम होते हैं, नहीं इनसे बू आती है, नहीं ये बू दिमाग में भरी हुई है। याद रखिए, जिसने जिसको उसकी गुर्बत की वजह से हकीर समझा, उसने अल्लाह को चैलेंज किया, क्योंकि वो गरीब है, ये उसका फैसला नहीं है, ये अल्लाह का फैसला है। तो कभी किसी को देते वक्त ऐसा ना दें कि बुरा हाल हो। और खास तौर पे यहाँ चूंकि सहाबे सुफा की बात और आगे भी है, तो खास तौर पे जब हम दीन के नाम पे देते हैं, मस्जिदों में, मदरसों में, और इसी तरह की कोई हालात है। आयत पूरी पढ़ेंगे तो आगे वाला हिस्सा साथ आएगा, एंड पे इंशाल्लाह अगर मौका हुआ तो बात करेंगे। अल्लाह कहते हैं वालम अन्नल्लाह गनीयुन हमीद, खूब जान लो कि अल्लाह बेनियाज और तारीफ के लायक है। बेनियाज किससे? ये तुम्हारे बच्चे खुचे देने से, उसको केयर नहीं है। और वो तारीफ किया गया, यानी लोगों से तारीफें लेने के लिए तो खूब खिलाते हो, एक दावत कर लो 10 खाने पकाते हो। सच बताएं, क्या 10 खाने पेट में जाते हैं उसके? नहीं, दिमाग में जाते हैं, कितना पकाया था, क्या इज्जत दी थी हमें, और क्या अच्छा पकाती हैं ये। माने के ना माने, मैं खुद औरत हूं, अगर आप जरूरत से ज्यादा चीजें पकाते हैं तो उसमें एक जुमला जरूर सुनना आप चाह रहे होते हैं कि कितना कुछ पकाया था। आपको भी पता है कि जब खाने की टेबल पे देखिए चिकन जो रोस्ट है तो उसके साथ चाम की क्या जरूरत है, दो सूखी चीजें आप खा ही नहीं सकते। फ्रूट चाट है तो दही बड़ों की क्या जरूरत है, आप तो खुद अगले के दिमाग पे बोझ डाल रहे हैं। ये कब होता है, जब हम एक प्रोटोकॉल में फंसते हैं या फिर दूसरे को जरा इम्प्रेस करना चाहते हैं।